लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम लोगों के मूल और स्मृति का प्रतिनिधित्व करने वाले विश्व के समस्त बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका अनुभव और ज्ञान युवाओं को भविष्य की ओर आशा और जिम्मेदारी के साथ देखने में मदद करे। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। यह ग्रंथ सभी मनुष्यों के लिए प्रज्ञा का आमंत्रण है। जिसे अपनी संपत्ति का भरोसा है उसका पतन होगा, किंतु धर्मी नए पौधों जैसा लहलहाएगा। जो अपनी गृहस्थी का ध्यान नहीं रखता उसकी विरासत नष्ट हो जाएगी, मूर्ख बुद्धिमान का नौकर बनेगा। धर्मी को जीवन वृक्ष प्राप्त होगा, बुद्धिमान लोगों का हृदय मोह लेता है। यदि धर्मी को पृथ्वी पर अपने कर्मों का फल मिलता है तो दुष्ट और पापी को क्यों नहीं मिलता। श्रोताओ, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 11वें अध्याय के अंतिम चार पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इस तथ्य की ओर हमने श्रोताओं का ध्यान आकर्षित कराया था कि 28वें पद की सूक्ति हमें धन संपत्ति का मूल्य सिखाती है और साथ ही इस तथ्य के प्रति चेतावनी देती है कि यदि हमारा पूरा भरोसा धन पर होगा तो हमारा पतन अवश्यंभावी है, क्योंकि धन ने कभी किसी का साथ नहीं दिया। तथापि धर्म और विश्वास का पालन करने वाले फलते फूलते गए। लेखक कहता है कि धर्मी नए पौधों जैसा लहलहाएगा। धर्मी पुरुष और धर्मी स्त्री धन पर नहीं परंतु ईश्वर पर भरोसा करते हैं, जो उन्हें सचमुच में एक समृद्ध जीवन की ओर ले जाता है। फिर लेखक सावधान कर कहता है, जो अपनी गृहस्थी का ध्यान नहीं रखता उसकी विरासत नष्ट हो जाएगी और मूर्ख बुद्धिमान का नौकर बनेगा। श्रोताओ, मूर्ख बुद्धिमान का नौकर बनेगा से तात्पर्य यही कि मूर्ख अपने ही गुमान में रहता है और इस भ्रम में पड़ा रहता है कि उसे सब कुछ आता है, उसे किसी की जरूरत नहीं और इसीलिए वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। उसकी जगह नौकर तक ही सीमित रहा करती है। दूसरी ओर बुद्धिमान वही है जो ईश्वर पर भरोसा रखता और उनके नियमों पर चलता है। उसी को ईश्वर ऊपर उठाते और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। 11वें अध्याय के अंतिम दो पदों में सूक्ति ग्रंथ का लेखक मानो प्रश्न करता है, धर्मी को जीवन वृक्ष प्राप्त होगा, बुद्धिमान लोगों का हृदय मोह लेता है। यदि धर्मी को पृथ्वी पर अपने कर्मों का फल मिलता है तो दुष्ट और पापी को क्यों नहीं मिलता। श्रोताओ, धर्म परायण व्यक्ति का जीवन फलप्रद सिद्ध होता है। वह केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी ईश्वर की आशीष को पाने में सफल होता है, यानी अन्यों के लिए जीवन का स्रोत बनता है। नवीन व्यवस्थान में निहित गलातियों और एफेसियों को प्रेषित पत्र में संत पॉल लोगों पर ईश्वर के आत्मा के फल की बात करते हैं। गलातियों को प्रेषित पत्र के 5वें अध्याय के 22वें और 23वें पदों में ईश्वर के आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा के फलों का विवरण वे इस प्रकार देते हैं। आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। और एफेसियों को प्रेषित पत्र के 5वें अध्याय के 9वें पद में ज्योति के संतान के सदृश आचरण का आग्रह कर स्मरण दिलाते हैं। जहाँ ज्योति है वहाँ हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सच्चाई उत्पन्न होती है। 11वें अध्याय का अंतिम पद कि यदि धर्मी को पृथ्वी पर अपने कर्मों का फल मिलता है तो दुष्ट और पापी को क्यों नहीं मिलता, हमारे मन को कुछ विचलित जरूर करता है, किंतु इसके मर्म को समझने की आवश्यकता है। वस्तुतः इस सूक्ति में न केवल एक स्पष्ट और दृश्यमान सत्य निहित है, अपितु एक ऐसा सत्य निहित है जिस पर विचार जरूरी है। इस प्रकार का प्रश्न संत पेत्रुस के पहले पत्र के 4वें अध्याय के 17वें पद में हम पाते हैं। संत पेत्रुस लिखते हैं, न्याय ईश्वर के घराने से प्रारंभ हो रहा है। यदि वह इस प्रकार हमसे प्रारंभ हो रहा है तो अंत में उन लोगों का क्या होगा जो ईश्वर के सुसमाचार में विश्वास नहीं करना चाहते। सार यही कि सबको अपने किए का फल मिलेगा, दुष्ट को दंड और धर्मी को पुरस्कार।
वंदे प्रभु, वंदे मसीह, शत शत वंदना, वंदे प्रभु।
और अब आइए सूक्ति ग्रंथ के 12वें अध्याय पर गौर करें। 28 पदों वाले सूक्ति ग्रंथ के 12वें अध्याय में लेखक धार्मिकता की स्तुति और दुष्टता का खंडन जारी रखता है। बुद्धिमान और धर्मी डांटे जाने का बुरा नहीं मानते और वास्तव में लाभान्वित होते हैं, जबकि दुष्ट सच्चे मार्ग पर आने से डरते हैं, वे क्रुद्ध होते हैं और समझाने वाले का बुरा करने लग जाते हैं। वस्तुतः इस अध्याय में भी उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति की गई है जो लेखक ने 11वें तक के अध्यायों में की थी। भलाई का फल भला और बुराई का फल बुरा होता है। सूक्ति ग्रंथ के 12वें अध्याय के प्रारंभिक 4 पद इस प्रकार हैं, जिसे अनुशासन प्रिय है उसे ज्ञान भी प्रिय है, जो सुधार से घृणा करता है वह मूर्ख है, जो भला है उसे प्रभु की कृपा मिलती है, किंतु प्रभु कपटी को दंड देता है, जो बुराई करता है वह टिक नहीं सकता, किंतु धर्मियों की जड़ें नहीं उखाड़ी जाएंगी। सच्चरित्र पत्नी अपने पति का मुकुट है, किंतु व्याभिचारिणी अपने पति की हड्डियों का क्षय है। श्रोताओं, इन पदों में यही कहा गया है कि जिनके पास कृपा है वे उन्हें दिए गए निर्देशों से प्रसन्न होंगे, किंतु जो विश्वास का गला घोंट देते हैं वे पशुवत हैं, मूर्ख हैं। यद्यपि मनुष्य पापी कलाओं के द्वारा स्वयं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकता है, वह ऐसी कलाओं से स्वयं को व्यवस्थित और सुरक्षित नहीं कर सकता। संभव है कि उसे बड़ी संपत्ति मिल जाए, लेकिन वह उसका स्वाद तक नहीं चख पाएगा। स्तोत्र ग्रंथ के 73वें भजन में भजनकार कहता है कि उसने ईश्वर के मंदिर में उन लोगों की अंतगति को समझा जो दुष्कर्मों में लगे रहते हैं। निश्चय ही तू प्रभु उन्हें पिच्छल भूमि पर रखता और उन्हें विनाश के गर्त में गिरने देता है। सार यही कि जो समृद्धि पाप से उत्पन्न होती है वह रेत पर बनी होती है और इसलिए शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। दूसरी ओर भले मनुष्यों के पास संसार का बहुत थोड़ा होता है, किंतु जितना भी उनके पास होगा वह टिका रहेगा, क्योंकि वह ईमानदारी से मिला है। धर्मी की जड़ नहीं हिलेंगी चाहे उनकी डालियां हिल जाएं। वे जो विश्वास में मसीह से जुड़े हुए हैं वे दृढ़ता से स्थिर रहेंगे। उसी में उनका आराम और खुशी निहित है जो कभी उखाड़ी नहीं जा सकती। फिर सूक्ति ग्रंथ का रचयिता कहता है, सच्चरित्र पत्नी अपने पति का मुकुट है, किंतु व्याभिचारिणी अपने पति की हड्डियों का क्षय है। श्रोताओ, सदाचारी पत्नी पति के लिए प्रसन्नता का स्रोत बनती है, वह उसके लिए किसी ताज से कम नहीं होती। ऐसी स्त्री जो धर्म परायण, विवेकपूर्ण, विनम्र, सरल, दयावान और मेहनती होती है, वह अपने परिवार की भलाई के लिए सक्रिय रहती है और अपने पति, अपने बच्चों और अपने घर की देखभाल भलीभांति करती है। वह हर रिश्ते को अपना कर्तव्य समझकर निभाती और इसीलिए उसे सूक्ति ग्रंथ में पति का मुकुट कहा गया है। दूसरी ओर व्याभिचारिणी स्त्री होती है जो अपना ही नहीं अपितु अन्यों का भी घर बर्बाद कर डालती है। सूक्ति ग्रंथ का लेखक कहता है कि जो व्यक्ति बुरी पत्नी के कारण पीड़ित रहता है वह सड़ी हुई हड्डियों के समान है, क्योंकि वह अपनी ही पत्नी के कारण लज्जित होता है। ऐसी पत्नी मूर्ख और आलसी है, वह बेकार और प्रचंड है, भावुक और बदरंग है, क्योंकि वह अपने पति के मान सम्मान में बाधा बनती है। अभिप्राय यही कि जीवन में जरूरी है अनुशासन, जो व्यक्ति को ज्ञानार्जन की क्षमता प्रदान करता है, और ज्ञान ही उसे भलाई की प्रेरणा देता और उसकी भलाई उसे ईश्वर का कृपा पात्र बनाती है।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। बुधवार को आम दर्शन समारोह के अंत में संत पोप फ्रांसिस ने वैटिकन द्वारा आयोजित ग्रीष्म शिविर में भाग लेने वाले बच्चों का विशेष रूप से अभिवादन किया, साथ ही उनके संचालकों एवं ग्रीष्म शिविर के स्टाफ से मुलाकात की। संत पापा ने कहा, मैं वैटिकन में ग्रीष्म युवा शिविर के बच्चों का अभिवादन करता हूं। वे अभी तक शांत थे, किंतु अब उनका शोर सुना जा सकता है। उनके साथ उनके माता पिता और शिविर के संचालक भी हैं, जिन्हें मैं उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं फादर फ्रांको वैटिकन के आध्यात्मिक आत्मा को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक अच्छे सलेशन के रूप में इस बीज को रोपा। इस ग्रीष्म शिविर का यह तीसरा साल है। संत पापा ने बुधवार को पौषष्टम सभागार में आम दर्शन समारोह के अंत में फादर फ्रांको फोंताना के कार्यों को एक महान कार्य कहा। फादर फ्रांको ग्रीष्म पहल के चैपलिन एवं संयोजक हैं, जिन्होंने विभिन्न उम्र के युवाओं के रूप में वैटिकन कर्मचारियों के बच्चों को उनके ग्रीष्मकालीन क्रियाकलापों में 3 साल तक स्वागत किया है। ग्रीष्म शिविर में प्रार्थना और चिंतन भी किए जाते हैं। इससे वैटिकन के मनोरंजन और खेल गतिविधियों के लिए सुसज्जित निर्दिष्ट क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है। फादर फ्रांको ने आम दर्शन समारोह में बच्चों के शोरगुल और खेलकूद के बीच संत पापा के अभिवादन को ग्रहण करने के आनंद, साथ ही साथ चिंता को भी वैटिकन न्यूज को साझा किया। उन्होंने कहा, मैं आम दर्शन समारोह में धर्म शिक्षा के दौरान बच्चों को चुप रखना चाहता था, जैसा कि उन्हें करने की हिदायत पहले दी गई थी। फादर ने एक खूबसूरत क्षण के बारे भी बतलाया जो आम दर्शन समारोह के पहले हुआ। उन्होंने कहा, संत पापा ने एक छोटे कमरे में संचालकों से मुलाकात की और उनका विशेष रूप से अभिवादन किया, उन्हें धन्यवाद दिया और सबसे बढ़कर प्रोत्साहन दिया कि किस तरह यूखरिस्त के प्रति उत्साह उनके संपूर्ण जीवन को प्रेरित कर सकता है। फादर फ्रांको ने बतलाया कि 3 साल पहले संत पापा ने उन्हें कुछ करने को कहा था, खासकर महामारी के समय, जिसके कारण ग्रीष्म शिविर का आयोजन किया गया। पहले साल ग्रीष्म शिविर में कुल 150 युवाओं ने भाग लिया और इस साल करीब 230 बच्चे भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह आयोजन धर्म सामाजिक एवं लोक धर्मी लोगों के सहयोग से संभव हो पाया है, जो एक परिवार का माहौल उत्पन्न करते, एक ऐसा स्थान तैयार करते जहां बच्चे अपने घर के समान महसूस कर सकें। उन्होंने बतलाया कि शिविर में प्रार्थना के साथ साथ खेल, शिक्षा, मनोरंजन और भविष्य के लिए सपने देखने में मदद देने हेतु विभिन्न क्रियाकलाप किए जाते हैं। आज कैथोलिक कलीसिया पुरोहितों के संरक्षक संत जॉन मेरी व्यानी का पर्व मनाती है। संत पापा फ्रांसिस ने इस अवसर पर सभी पुरोहितों को शुभकामनाएं देते हुए याद दिलाया कि वे विश्वासों की उदार सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। संत पापा ने 4 अगस्त को एक ट्वीट में लिखा, यीशु भले चरवाहे हमारी चिंता करते हैं क्योंकि वे हमें सचमुच प्यार करते हैं। हम कलीसिया के चरवाहे झुंड की देखरेख करने हेतु उसी तरह की उदारता दिखलाने के लिए बुलाए गए हैं, ताकि हम सभी लोगों के लिए यीशु की चिंता और घायलों के प्रति उनकी करुणा प्रकट कर सकें। लेबनान के बेरूत में 4 अगस्त 2020 को बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट युक्त विस्फोट हुआ था, जिसकी याद करते हुए संत पापा ने उम्मीद जताई कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद से लेबनान पुनः निर्माण के रास्ते पर आगे बढ़ पाएगा। विस्फोट में करीब 200 लोगों की मौत हो गई थी और 6,500 से अधिक लोग घायल हो गए थे। अनुमानतः 40,000 इमारतें ध्वस्त हो गई थीं। संत पापा ने एक ट्वीट में लिखा, मैं आशा करता हूं कि लेबनान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद से पुनः जन्म के रास्ते पर फिर से आगे बढ़ेगा और वह शांति एवं बहुवाद की भूमि होने की अपनी बुलाहट में विश्वस्त रह पाएगा, जहां विभिन्न धर्मों के समुदाय भाईचारा के साथ रह पाएंगे। कनाडा के येसु समाजों के साथ संत पापा फ्रांसिस की वार्ता को जेसुइट पत्रिका ला चिविल्ता कैथोलिका में प्रकाशित किया गया है, जिसमें संत पापा ने सिनोडालिटी की शक्ति, हैती के लिए चिंता, परिवारों के प्रति कलीसिया के प्रेम और धर्म विधि, ईश प्रजा की सार्वजनिक प्रशंसा आदि पर प्रकाश डाला है। केबेक में संत पापा फ्रांसिस ने अपने जेसुइट भाइयों से एक व्यक्तिगत मुलाकात की थी, जहां उनके साथ बातचीत भी किया था। बृहस्पतिवार को ला चिविल्ता कैथोलिका पत्रिका ने जेसुइट पोप एवं उनके जेसुइट भाइयों से मुलाकात को प्रकाशित किया, जिसकी मुलाकात केबेक शहर के महाधर्माध्यक्ष आवास में पोप की कनाडा में प्रायश्चित तीर्थ यात्रा के अंतिम दिन हुआ था। प्रेरितिक यात्राओं में संत पापा फ्रांसिस अक्सर अपने जेसुइट भाइयों के साथ एक व्यक्तिगत मुलाकात का समय रखते हैं तथा एक अनौपचारिक बातचीत में उनके सवालों का उत्तर देते हैं। उन जेसुइटों के बीच वैटिकन में समग्र मानव विकास हेतु गठित परमधम पीठे परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल माइकल चर ने भी उपस्थित थे। संत पापा ने कहा है कि सिनट कोई राजनीतिक सभा नहीं है, न ही संसद ने निर्णय के लिए बनी समिति, बल्कि यह कलीसिया की अभिव्यक्ति है, जहां मुख्य पात्र है पौत्र आत्मा। संत पापा ने कहा है कि यदि आप ई शास्त्र की उत्तम पुस्तिका पढ़ना चाहते हैं तो प्रेरित चरित्र को फिर से पढ़ें। वहां आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि मुख्य पात्र पौत्र आत्मा है। सिनड में पौत्र आत्मा के कार्यों को महसूस किया जाता है। कोंगो गणराज्य के धर्माध्यक्षों ने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद अपनी चिंता व्यक्त की है, जिसमें अफ्रीकी राष्ट्र के पूर्व में 3 दर्जन लोग मारे गए। कोंगो की सरकार ने कहा है कि पूर्वी कोंगो में संयुक्त राष्ट्र के मिशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में कुल 36 लोग मारे गए हैं और 170 लोग घायल हुए हैं। इसके जवाब में कोंगो के धर्माध्यक्षों ने लोगों के गुस्से के लिए समझदारी दिखाई है, किंतु कहा है कि हिंसा को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कोंगो के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष मार्सेल उत्तेम्बी तापा द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति में कहा गया है कि धर्माध्यक्षों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया है। धर्माध्यक्षों ने कहा है कि वे इस तनाव को दुख और उदासी के साथ देख रहे हैं, जबकि कोंगो में यूएन के स्थिरीकरण मिशन की कमजोरियों के कारण लोगों के गुस्से पर भी गौर किया है। देश के नियमानुसार कोंगो के धर्माध्यक्षों ने नागरिकों को हिंसा और लूटपाट नहीं करने का आह्वान किया है, जो लोगों के लिए केवल बुराई और दुख लाता है। उन्होंने सरकार को प्रोत्साहन दिया है कि वह कोंगो में संयुक्त राष्ट्र बल तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधियों से वार्ता करें। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।